क्या नहीं कर सकते, ये चंद जुमले नोट कर लीजिएगा। मर्दों और औरतों सब के लिए सेम रूल्स हैं, याद रखिए। इबादत दोनों के लिए एक है। औरत और मर्द की जो बहस है ना, याद रखिए ये मामलात में, वो आगे हम पढ़ेंगे, जिम्मेदारियों में, हकूक में। अदरवाइज इबादत सब की एक है। ये नहीं कि मर्दों का कलमा अलग है और औरतों का कलमा अलग है, ठीक है। तो पहली बात है कि जिस्म या अहराम पर खुशबू लगाना, हत्ता के मुहरिम को वफात के वक्त भी खुशबू नहीं लगाई जाएगी। यानी अगर कोई अहराम की हालत में मर जाए तो खुशबू नहीं लगेगी, जैसे काफूर वगैरह मलते हैं मैयत को। निसाई 2856। इस तरह बाल और नाखून नहीं काट सकते। मुस्लिम 1977। उजर की वजह से बाल कटवाए या मुंडवाए जाते हैं लेकिन फिदिया दिया जाएगा। बुखारी 1815। कुरान क्या इजाद है, एक सहाबी के सर में जुएं पड़ गई, काब बिन उजरा, तो फिर उन्होंने बाल कटवाए और बाद में फिर फिदिया दिया। इसी तरह जिनसी अफाल, लड़ाई झगड़ा या नाफरमानी का काम, अल-बकरा 197 और बुखारी 1521। निकाह नहीं करवा सकते अहराम की हालत में, ना कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं, ना पैगाम दे सकते हैं, मुस्लिम 1409। इसी तरह खुश्की के जानवर का शिकार या शिकार में ताउन नहीं कर सकते, अगर कोई कर दे आपके लिए तो उसको खा सकते हैं। माईदा 95 याद है हदीस, सहाबी कम अमल, ठीक है। इसी तरह मर्दों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पाबंदियां, मसलन सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, अबू दाऊद 1823। सर पे पगड़ी टोपी या कपड़ा नहीं ओढ़ सकते, अबू दाऊद 1823। मोजे जुराबे या टखनों से ऊपर जूते पहनने पसंदीदा नहीं है, मुस्लिम 1177। और औरतों के लिए जैसे बता दिया, निकाब और दस्ताने, और ना ऐसा कपड़ा जो ज़ाफ़रानी रंग में रंगा हो, यानी येलो कलर का पहले दौर में खुशबू वाला कपड़ा होता था, वो नहीं कर सकते इस्तेमाल, बुखारी 1838। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जहाँ ये बात होगी वहाँ फिदिया भी होगा। फिदिया क्या होता है कि किसी भी चीज़ में जो कमी बेशी हो गई है उसको फिर किसी तरह से कंपनसेट किया जाएगा। तो कुछ चीज़ों में फिदिये हैं, कुछ में नहीं है। आप में जो भी जाना चाहे वो इन बुक्स को फ़ायदे की खातिर ज़रूर पढ़े, और इसी में फिर उम्रे का तरीका भी मौजूद है। देखिए जो बाल खुद तोड़े वो नहीं, और दूसरी बात है कि जब इस तरह कंघी करेगी ना, तो वो इस तरह नहीं करेगी कि बाल टूटे। जैसे आप शावर ले रहे हैं ना, बाल खोलेंगे, हाथ से उंगली से इस तरह सहलाना और उसको दोबारा बांध लेना, इस तरह से, यानी अवॉइड कीजिए उसको कि कंघी इस तरह करें कि उसमें से आपके बाल निकलें। और वैसे भी हम सबको खुद भी पता होता है कि कंघी में मेरे बाल गिरते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं, लेकिन अगर खुद से ना पता हो, बाल निकल जाए, टूट भी जाए, फिर भी इस ओके। लेकिन जान के तोड़ना और एहतमाम से इस तरह कंघी करना कि जिससे यानी वाकई टूटे, उसे अवॉइड करना चाहिए।
जान के तोड़ने से क्या मुराद है, ये
बाल
बताइए।
खींचना, नोचना, प्लकिंग करना, वैक्स करना, बालों को निकालना, ऐसे कोई भी बाल नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उम्रा क्या होता है, इसका असल क्या है, आबाद करना। हज तो साल में एक बार है ना, उम्रा बार बार है। तो उम्रा क्या है, जो लोग हज नहीं कर पाते वो उम्रा ही कर लें, और आबादी ही असल में हरम की उम्रे के साथ है। और जब उम्रा किया जाता है तो उसमें इंसान वो सारे काम करता है जो हज के सफ़र के बाद शुरू के दिन किए जाते हैं, मसलन गुसल करना, खुशबू लगाना, एहराम बांधना, दिल से उम्रे की नियत करना, अल्लाह लब्बैक का उमरतन, फिर तलबिया पढ़ना। किसी को महसूस होता है अगर कि मैं रुक जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, औरतों के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो जब एहराम बांधे तो दुआ कर लेनी चाहिए, अल्लाहुम्मा महली हैसु हबस्तनी, ए अल्लाह मेरे हलाल होने की जगह वही है जहां आप मुझे रोक दें। ये बुखारी के अल्फाज हैं 5089। तो कभी मजबूरी हो तो ये दुआ पढ़ लीजिए, फिर अगर एहराम खोलना पड़ा तो गुनाह नहीं। तलबिया किस किस को आता है, पढ़ेंगे जरा सब मिल के पढ़ें। ये बुखारी 1549 है, इसके जरा मानी भी तो उर्दू में पढ़े मिल के ऐसे ही। वाकई हाजिर है। आप देखिए जब हम वहां लब्बैक कहते हैं तो क्या हमें हर नेकी के मौके पे लब्बैक नहीं कहना चाहिए, ये सवाल करें। क्या मैं हर नमाज के मौके पे लब्बैक कहती हूँ फौरन उठ के, और हर नेकी के मौके पे मेरा जवाब लब्बैक होता है या कुछ और होता है। असल में ये इस चीज़ की अलामत थी कि आप लब्बैक कहेंगे। चलिए, लब्बैक कहने की हिकमत समझ आई, लिखें रूहानी पहलू लब्बैक का। हर नेकी के मौके पे यस कह दें। मुझे समझ नहीं आता हम इतना सोचते क्यों हैं। हम नेकियों के मौके पे आगे बढ़ने से पहले इतना सोचते क्यों हैं। ज़िंदगी में एक असूल मैंने अपने लिए रखा हुआ है और मुझे लगता है कि अल्लाह उसकी वजह से ही खैर के रास्ते खोलता है। कभी नो नहीं की, रा आती नेकी या वो नेकी जो मेरे सामने कोई ऑफर कर दे, मैंने कभी पर्पसली इरादतन उसको नो नहीं कहा। छोटी है ले ली, बड़ी हो जाएगी खुद ही बाद में, उससे बड़ी मौजूद है लेकिन मेरे पास तो नहीं है ना अभी, मैंने ले ली। फिर आप देखिए कि उससे आला दर्जे की भी नेकी है, आज तो नहीं है ना मेरे हाथ में। देखिए मैं आपको मिसाल देती हूँ, मुझे प्यास लगी तो मेरे पास क्या पड़ा हुआ इस वक्त, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे तो ऑरेंज जूस चाहिए, और अगर फ्रिज में ऑरेंज जूस है तो वो भी नहीं चाहिए। हमारा ये हाल है, समझ आ गई है? अल्लाह आपको मुझे ये नहीं कहेगा आपने क्या किया, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, अल्लाह ये भी कहेगा कि क्या कर सकते थे और नहीं किया। और मुझे ये वो खुफिया छोटी चंद बड़ी बातें जिससे मेरे दिल में इत्मीनान है। कभी किसी नेकी को हकीर नहीं जाना, किसी बंदे को हकीर नहीं जाना, और कभी किसी नेकी को हकीर नहीं जाना। हत्ता कि आपने कहा रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाने की हो ना, उसको भी हकीर ना जानो। और मैं और आप अपनी ज़िंदगी पे एक नज़र डालकर देखें, नेकियों के मौके मुंह खोल के खड़े होंगे, लेकिन हम उजर, एफ्स एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन। इतना तो बंदे को गुनाहों पे सोचना चाहिए। गुनाह पे हम क्या कहते हैं, कर लो ले लो ले लो, सेल लगी है, एक तुम भी ले लो, फ़ोन करेंगे तुम्हारी भी ले लूं, दोस्त को फ़ोन करेंगे, बहन को फ़ोन करेंगे। बाज़ दफ़ा गुनाह ना भी हो, मुबाही सही, कोई इस्तेमाल की चीज़ है, उसकी भी ले लूँ, इसकी भी ले लूँ। और जहाँ नेकियों की बात हो सोच ले, इतने क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके दिमाग में नेकी के नाम पे। तो फिर याद रखिए कि ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं है। ये क्यों पढ़ाया जाता है जब आप बस में वहाँ बैठते हैं, ख़ास तौर पर बस में जाके लोग ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो मैं पूरा वक्त उस वक्त यही सोच रही होती हूँ जब भी अल्लाह ने मौका दिया, ए अल्लाह ये दिल की पुकार बना दे। ये थी अबू बकर की अशरे मुबशर होने की वजह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये थी उमर के उमर होने की, और उस्मान के और अली के अली होने की वजह, उन्होंने नेकी के मौके पे लब्बैक का। देखिए कोई आपको गुनाह का मौका दे ना, क्या कहना चाहिए? ला लब्बैक, सॉरी, मेरे से नहीं उम्मीद रखना। आपको कोई दोस्त बुलाती है, आओ गलत चीज़ में मददगार बन जाओ, कोई आपका रिश्तेदार बुलाता है, उस पर 100 दफ़ा सोचिए नेकी के मौके पे क्या कहें। और ये कौन कहेगा? अल्लाहुम्मा कहेगा, जिसके दिल में अल्लाह का लफ्ज़ है। जो आप अल्लाह के लिए नेकी करते हैं और जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे करते हैं, उसमें शक नहीं होता। चलिए और क्या चीज़ करते हैं हज में, इधर लिखा हुआ नहीं है लेकिन लिख लीजिए, तवाफ। अगर आप मुझसे तवाफ का प्यार का नाम पूछे ना, लाड का नाम, समझ आ रहा है, तो वो क्या है? कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी, सब अल्लाह के लिए। कैसे वारफ्तगी के साथ एक बंदा वहां चक्कर लगाता है, दीवानगी नहीं है? जिस बंदे ने कभी ये देखा ना, वो कहेगा इनको क्या हो गया। देखिए बच्चे हैं ना, वो अमूमन माओ के कपड़े दुपट्टे ले लेकर ना घूम रहे होते हैं। कोई पिलर होगा तो छोटी बच्चियों को देखे उसके गिर्द मस्जिदों में घूम रही होती है ना, ये तो बच्चों वाला काम है। लेकिन वहां जाकर बंदा बच्चा बन जाता है, अल्लाह को ये दिखाने के लिए कि मैं भी आपका दीवाना हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी आपके गिर्द घूमती है। आप इसकी फ़िकही, इसकी शरई, इस्तलाही तारीफ़ें 10 पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह लिखाने को तैयार हूँ। अजर से, सवाब की नीयत पे, खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने, मुकामे इब्राहिम से शुरू करना और उसी पे आके ख़त्म करना, फिर 7 चक्रों के आखिर में 2 नफिल पढ़ना, ये तवाफ़ है। कोई आप में से जाए वहाँ तो क्या हजरे अस्वद, जहाँ बहुत रश होता है ना, जहाँ से शुरू होता है कंजक्शन होता है, वहाँ आप वहाँ की बजाय उसे अगले कोने पे शुरू कर सकते हैं जहाँ से जगह शुरू हो जाती है हतीम की। आप रुकने जमानी से शुरू करें, वहाँ तो बहुत ही खुली जगह होती है, कहाँ से शुरू करते हैं और ख़त्म भी कहाँ करते हैं? और अगर आप सिर्फ वो आखिरी चंद स्टेप ना करें और बीच से निकल के चली जाएं, अमूमन हम पाकिस्तानी लोग बाबे फहद की तरफ रहते हैं ना, मोस्टली सीधे सामने होटल्स उधर ही हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपका घर का रास्ता उधर है ना, तो जहाँ पे तवाफ ख़त्म होता है वो आगे जाके फिर पलट के आना पड़ेगा। कोई तस्वुर भी करता है कि इतनी सी जगह छोड़ दें, बिदाया तो नहाया तो तवाफ लिखा है ना, तो अमली ज़िंदगी में क्या हो जाता है। मैं ये है तवाफ, बाउंड्रीज को समझो, नेकी पूरी करो, अधूरी नेकियां छोड़ दो, राह जाती भागती दौड़ती नहीं। आप देखिए कि दीन का मिजाज आप सिर्फ एक हज और उमरे से सीख सकते हैं। अल्लाह करे आपको मुझे वो हज और वो उमरा नसीब हो जाए, दिल दिमाग में हिकमतों के दरवाजे खुल जाएं, फिर आपको दूसरों से नहीं पूछना पड़ता, फिर आपका दिल बताता है कि क्या है, उल्टे चलें तो इबादत होगी, तवाफ सीधा ही है ना। और आप देखिए कि आप वहां खड़े होकर तवाफ के दौरान रुकू भी शुरू कर दें, तवाफ होगा। जब वहां बे सोचे समझे चल रहे हैं, तो आप इस दुनिया में वापस आकर फिर क्यों इतने इफ्स एंड बट्स में पड़ते हैं। ये आपको मुझे तवाफ सिखाता है। फिर इसकी इकसाम है, इसकी शरायत है, मैं इनमें नहीं उलझाऊंगी आपको, अल्लाह आपको ले जाए, आप उससे पहले पढ़ कर जाइए। लेकिन तवाफ बराए तवाफ नहीं है, घूमना बराए घूमना नहीं, वहां से लेके आइए फफिर्रु इलल्लाह। और यही है कि कुल्लू यस्बहून, सारे ही भाग रहे हैं। आप देखिए कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबको पता है ना, अंदर क्या है न्यूट्रॉन, बीच में क्या है न्यूक्लियस, घूम क्या रहा है, और प्रोटॉन क्या है, ये हाथों से ही आप देख लीजिए। ये सिखाता है एक सेल, इवन अमीबा यूनिसेलुलर जानवर आपको सिखाता है कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। तो आप सिर्फ इस बात का इजहार है कि तुम भाग दौड़ करो, अल्लाह के गिर्द चक्कर लगाओ। और हम वहां बैठ कर भी जाकर बातें अल्लाह के बजाय फोनों पे करके आते हैं। अब तो ये भी मुसीबत है, आप नहीं कर रहे ना, आपके साथ वाला अपने फोन पे बातें कर रहा है, सौदेबाजियां हो रही हैं। एक शख्स ने सुनाया कि मैं तवाफ में दूसरे शख्स की बातें सुन रहा हूँ, फोन आ गया, हेलो ये जी ये मुसीबत आ गई, अच्छा बड़ा सा बकरा जाकर बाबा जी के दरबार पे दे आओ। वल्लाही ये हंसने की नहीं रोने की बात है, खड़े कहाँ हो और बाबा जी को किधर बकरे दे रहे हो। याद रखिए ये जाहिल उम्मत के हज और उमरे हैं। जितना डिप्रेशन मुझे उमरे या हज पे जाकर उम्मत को देखकर होता है, कपड़ों से बेनियाज, वैसे कोई जरा टांगे नंगी कर ले तो कहेंगे मॉडल है, उस बेचारी का जीना दोबर कर देंगे। और वहां औरतें देखिए, दुपट्टे हटे हुए, सीधी सादी गांव की औरतें, और पता ही कुछ नहीं ना उनको, बेचारियों को जनाजे की नमाज पढ़नी आती, अपने कामों में। तो याद रखिएगा कि शऊर से करें। चलिए एक और क्या चीज़ होती है हज और उमरे का लाजमी हिस्सा, ये मेरे यहाँ सही क्या सिखाती है, सही क्या है, इबादत की नीयत से सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना या चलना, और 7 चक्कर पूरे करने, रुकन है याद रखिए, इसके बगैर हज उमरा नहीं होगा। लेकिन असल में सही क्या है, फ़फ़िरु इलल्लाह, कितनी, वन अलैहि इंसानी इल्ला मासा, वसतें कोशिशें भाग दौड़, कितनी सही है हमारी अल्लाह के दीन के लिए। मैं कहती हूँ बाहर की गंदगी देखे ना तो चैन नहीं पड़ता, किस जगह सांस ले रहे हैं हम लोग। लेकिन हम कहेंगे सही के फ़र्ज़ क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, इसमें बात करें, कहाँ दौड़ें, क्या करें, ये भी है। और कई लोग 7 चक्कर नहीं लगाते, आपको पता है कितने लगाते हैं, 14 लगाते हैं। उनकी स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि एक इधर नहीं पूरा होता, एक इधर से इधर आके पूरा होता है, वो 14 चक्कर लगाते हैं। जी जमात खड़ी हो जाती है, ये सही में मसरूफ़ रहते हैं, ये भी नहीं ठीक काम। कई हरम में जाके जमात से नमाज नहीं पढ़ते, क्यों, कहते हैं वहाबी हैं, ये सऊदी अरब वहाबी लोग हैं, इनके पीछे नहीं हमने पढ़नी। हज वाले दिन जाकर कोई इमाम काबा के पीछे जोहर और असर जमा करके नहीं पढ़ता, कहते हैं ये वहाबी हैं, खाना काबा वहाबियों के कब्जे में, नऊज़ु बिल्ला। इस उम्मत को क्या मिलना है, दुश्मनों ने गोलियां नहीं मारनी तो और क्या मारना है, हमें शर्म आनी चाहिए हमें अपने हाल पे। वहां जाके इख्तलाफ करते हैं जिस इबादत का मकसद ही यूनिटी था। तो ये असल में हमारी बेइल्म वाली इबादत है, अल्लाह ताला हम सब के रहम करे। उम्रे की फजीलत क्या है, आप देखिए कि दिल में शौक पैदा होता है अल्लाह के रस्तों में निकलने का, भागने का, और जितना ज़्यादा आप इसकी कोशिश करेंगे ना, अल्लाह ताला उतना आपके दिल में इसका और भी शौक डालेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह का घर आबाद रहता है, और उम्रा करने से दूसरे उम्रे तक गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। हज की हिकमत तो मैंने पीछे भी आपको बहुत सी बता दी, और एक आखिरी चीज़, और वो क्या है कि जिसका ना तो हज से ताल्लुक़ है ना उम्रे से ताल्लुक़ है, लेकिन हमारे शौक़ और मोहब्बत से ताल्लुक़ है, वो है ज़ियारत मस्जिद नबी। तीन जगहों में से एक जगह जिधर इबादत की नीयत से जाना सवाब का ज़रिया है, वो मस्जिद नबी है। अब यहाँ फिर एक जुमला बड़े गौर से सुनिएगा, सारी नातों में सुने और बोले हुए अल्फाज को सामने रखते हुए, मदीना क्यों जाना है? मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के शौक में, ज़ियारत रोज़े की नहीं। आज हमारे तसव्वुर में आ गया कि काबा अल्लाह का है, मक्का अल्लाह का है, खाना काबा भी अल्लाह का है, और मदीना रसूल का है, और मस्जिद नबी भी रसूल की है, और उसमें जो रोज़ा और रोज़े की जालियाँ, देखिए हर चीज़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन मदीना जाएंगे मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए जाएंगे तो अजर है, मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो अजर है, लेकिन अगर मस्जिद का तसव्वुर अलग करके रोज़े को देखना, रोज़े पे खड़ा होना, इवन अब रियाजुल जन्ना में नफिल की नीयत से भी जाएंगे तो भी वो सही फैसला नहीं होगा। तो मदीना की जैसे मैंने बात पहले भी कर दी, ये अपनी जगह पे एक बहुत ही सआदत है कि आपको अल्लाह मस्जिद नबी में जाने का मौका दे। मदीना में जाना भी बहुत मोहब्बत की बात है। हज़रत उमर मदीना में मौत की दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे मौत देना फ़ी बलदी रसूल, एक तेरे रसूल की बात। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ मस्जिद नबी में जाकर मुझे महसूस होती है कि अल्लाह के नबी का जस्ते मुबारक इधर मौजूद है। वाकई हरम में और मक्का में तो अल्लाह याद आता रहता है, और मदीना आकर नबी याद आते हैं, ख़ास तौर पर मस्जिद नबी। आप कहते हैं कि इमाम मालिक मदीना में जूता नहीं पहनते थे, प्यार था उनको, और मस्जिद नबी में किसी को ज़रा सा ऊंची आवाज़ से बात करते देखा तो डांट के कहने लगे, गुस्से में कहा कि साहिबे कब्र की तज़ीम करो, इधर आवाज़ें नीची रखो। तो अल्लाह ने उस जगह को बड़ी इज्जत दी है। मस्जिद नबी में नमाज का कितना अजर है, हदीस नोट कर लीजिए, बुखारी 1190 फरमाए, मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा अफजल है। अमूमन हमारे कल्चर में क्या मारूफ है? 50,000। ये पता क्यों है? चलो अल्लाह से आधा तो होगा ना रसूल का, वहाँ 1 लाख है तो यहाँ 50,000, ऐसा नहीं है। देखिए 1,000 भी बहुत है, ठीक है। फिर इसी तरह से इसकी ज़ियारत से इंशाल्लाह इंसान के दिल में इस्लाम की हिस्ट्री, सहाबा, अल्लाह के नबी का प्यार आता है, और अगर सीरत पढ़ के जाएं या वहाँ जाके पढ़ें तो एक एक सतून पे आपको पता है हिस्ट्री लिखी हुई है। सतून अबी लुबाबा कौन सा था, कौन थे अबू लुबाबा, किसने बांधा था उनको, क्यों बांधा था, रिग्रेट था कि ये क्यों कह दिया है। अल्लाह अकबर, कभी हमें भी इतना गिल्ट होता है अपनी गलतियों का? आप ज़रा सोचें तो सही, इस वक्त तो इस पूरी उम्मत को वहाँ खड़ा करके पढ़ाने की ज़रूरत है। मैं सोचती हूँ कि हम कैसी उम्मत बन गए अपने प्यारे नबी की। रियाजुल जन्ना क्या है? मा बैनल कब्री व मिम्बरी, नबी सल्लम के मिम्बर और कब्र के बीच की वो जगह जहाँ आजकल सब्ज़ रंग का कारपेट होता है, बाकी जगह पे सुर्ख है, इस जगह को आपने रियाजुल जन्ना कहा, और कहा कि क़यामत के दिन क्या होगा, ये जन्नत के बाग़ों में एक बाग है और मेरा मिम्बर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। बुखारी की रिवायत है 1196। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और जब जाएँ मस्जिद नबी में तो क्या रोज़े पे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जाके करना क्या है? अल्लाह के नबी के लिए दुआ करनी है, अपने लिए दुआ करनी है। देखिए मस्जिद नबी में इबादत की गरज से जाएंगे, रोज़े रसूल की नीयत से नहीं, रोज़े की जालियों को चूमना, छूना, बूसे देना, अब तो वो देने ही नहीं देते, बीच में बहुत सारे बैरियर्स हैं, गैर मस्नून दुरूद पढ़ना, और कब्र मुबारक पे वहाँ बैठकर कुरान पढ़ते रहना, और ये सोचना कि यहाँ आके जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होंगे, और ये सोचना कि यहाँ आके बोल रहे हैं तो अल्लाह के नबी सुन रहे हैं, और फिर वहाँ से उल्टे पहुँचाना, ये सारे गैर मस्नून अमल है। आप जाइए वहाँ, महसूस कीजिए, मोहब्बत को महसूस कीजिए, नमाज वाले ही दुरूद पढ़ेंगे, और अत्तहियातु लिल्लाही जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो भी वहाँ जाकर पढ़े जा सकते हैं, मुख्तसर दुरूद भी पढ़ सकते हैं। और असल बात यह है कि वहाँ जाकर तो ये देख कर आएँ कि इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी लगा दी आपको मुझे इस्लाम देने की, और आज उस इस्लाम को सिर्फ पढ़ने के वक्त पे ही आप देखें कि हमें कितना वक्त लग रहा है, अमल तो करना बहुत दूर की बात है अभी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इबादत तक जो मौजू हमारा पूरा हुआ, अल्लाह ताला हमारी इबादत में रंग डाल दे। आपने एक एक इबादत को अपनी चेक करना है, हज किया कि नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अपने बच्चों के हज की फिक्र कीजिए, अभी जवानियों में उनको हज करा दें अगर आप चाहते हैं कि उनके किबले दुरुस्त हो जाएं। और इसी तरह से अपने रोज़े और सारी चीज़ों को, और सबसे बढ़ के आज जो शुरू में आपको रूहानी पहलू दिया हर इबादत का, उस पर गौर व फिक्र करेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल वाला बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।